सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक बहुत अमीर व्यक्ति जो दिन रात परेशान रहता था, दिन रात चिंताग्रस्त रहता था, दुखी रहता था, एक ज्योतिष के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे इस दुख का निवारण करो, मेरे इस परेशानी से मुझे छुड़ाओ, मेरी कुंडली देखो, मेरा भाग्य पढ़ो, कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र गलत चल रहे हैं उसको ठीक करो। आवाज नहीं आ रहा है। तो वो अमीर व्यक्ति जो कि बहुत परेशान है, उस ज्योतिष के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे भाग्य में देखो क्या खोट है। ज्योतिष कुंडली निकालता है और कहता है कि कुंडली में तो सब कुछ ठीक है, ये जो तुम्हारी परेशानी है यदि तुम इसका निवारण चाहते हो तो एक आचार्य है जो भगवद गीता का पाठ सिखाते हैं, तुम उनके पास जाओ। तो वो व्यक्ति उस आचार्य के पास पहुंचता है और कहता है मैं बहुत परेशान हूं, मुझे यहां भेजा गया है, आप मुझे भगवद गीता सिखाओ। आचार्य जी कहते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय है, 3 मास लगेंगे, तुमको रोज आना पड़ेगा। वो कहता है 3 मास और 18 अध्याय, इतना समय मेरे पास नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया, आप ऐसा करो मुझे पहला जो अध्याय है फर्स्ट चैप्टर केवल उतना सिखा दो। तो गुरु जी कहते हैं 2 हफ्ता लगेगा उसको भी। वो कहता है 2 हफ्ता तो बिल्कुल मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, बिजनेस कारोबार इतना बड़ा है, मैं 2 हफ्ता कैसे बैठूंगा। वो कहता है कोई और शॉर्टकट क्रैश कोर्स। तो आचार्य जी कहते हैं अच्छा तो एक काम करो एक ही श्लोक याद कर लो 18वां अध्याय का, सर्वधर्मान परितज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच। वो कहता है इतना बड़ा श्लोक मेरे से तो नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है, याद करने को 1 हफ्ता लग जाएगा और तब क्या परिणाम होगा पता नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो गुरु जी कहते अच्छा एक काम करो इस श्लोक का जो अंतिम है मा सुच डू नॉट वरी चिंता ना करो केवल इतना ही याद कर लो। तो कहता है उसका अर्थ क्या, अर्थ बता दिया है मा सुच अर्थात चिंता नहीं करो, बस इसी को धारण कर लो, यही सार है गीता का चिंता न करो। वो कहता है पर इसको कैसे धारण करूंगा, चिंता तो मुझे है और केवल ना कहो करो चिंता, इतना कहने से चिंता से मुक्त हो जाएगी। वो कहता है इसीलिए तो कहता हूं पहले से पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि गीता का सार पढ़ लिया और काम पूरा हुआ। गीता जीवन है, गीता अर्थात गीत शिव का गाया हुआ गीत, भगवान का गाया हुआ गीत, उसको गीता कहा है। तब वो व्यक्ति थोड़ा अपने प्रपंच अपने विस्तार व्यवहार और व्यापार की चिंताओं से थोड़ा सा अलग होता है और कहता है कि ठीक है मैं पूरा ही पढ़ना चाहता हूं पहले अध्याय से, और तब जाके पढ़ना चालू करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस शास्त्र की जो इस संसार का शिरोमणि है, उस शास्त्र की जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी मुझे जीवन में कोई समस्या होती है जब भी कोई परेशानी होती है मैं भगवद गीता लेता हूं और बीच से कोई भी पेज खोलता हूं और उसमें मुझे उत्तर मिल जाता है, इट इज माय स्पिरिचुअल डिक्शनरी। गीता को महात्मा गांधी ने कहा मेरी ये स्पिरिचुअल डिक्शनरी है। विदेश के आर्थर शोफेनहावर जैसे जर्मन फिलोसोफर ने गीता के लिए कहा है इट्स अ सोलेस ऑफ माय हार्ट एंड शैल बी द सोलेस ऑफ माय लाइफ, मेरे दिल को सुकून है ये उसके शब्द उसके वाक्य। क्या है इस गीता में ऐसा, इस संसार में ऐसे कई शास्त्र हुए हैं पर जितनी टिकाएं भगवत गीता पर हुई है उतनी किसी भी शास्त्र पर की नहीं है किसी ने। जितने एक्सप्लेनेशन एक्सपोजिशन जितनी इंटरपोलेशन मिक्सचर डाला गया बाद में या अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया वो एकमात्र गीता शास्त्र है। बाइबल जो है वो है, कुरान तो बिल्कुल जो है जैसी ही अल्लाह से नाजिल हुई बस वैसी ही अनपोल्यूटेड उनका कहना है, बाकी सारे शास्त्र बस जो है वो है। पर गीता कितने सारे लोगों ने उस पर टीका की है, शंकराचार्य का अलग भाष्य अद्वैत वेदांत का भाष्य, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत वेदांत का टीका, माधवाचार्य का द्वैत वेदांत पर टीका, शास्त्र एक ही वाक्य एक ही श्लोक वही, श्रीधर स्वामी का अपना अलग सिद्धांत, प्रभुपाद एस्कॉन उनकी अपनी एज इट इज भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र अलग गीता, और गीताओं में भी कितनी सारी गीताएं हैं, अवधूत गीता, व्याद गीता, गीता रहस्य लोकमान्य तिलक। एक ही शास्त्र पर जब से वो आया है तब से कई लोगों ने उस पर इतना सारा कुछ लिखा है। यदि गीता के इतिहास का अध्ययन करे, वो कब लिखा गया, वो किसने लिखा, संदिग्ध है सब कुछ। कहा व्यास ने लिखा, पर व्यास तो सरनेम है। व्यास नाम के शायद बहुत सारे लोग हुए होंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं था, शायद बहुत सारे होंगे जिन्होंने इसको कंपाइल किया। अगर ये गीता वही है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई और कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव समवेत किं कुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ मेरे और पांडवों के पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस समय क्या कर रहे हैं। यहां से गीता की शुरुआत है। अगर ऐसी उसकी शुरुआत है तो गीता में जो श्लोक है वो पहले से ही उपनिषद में कहां से आए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो कृष्ण कह रहा है अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो श्लोक पहले से ही उपनिषदों में है, वो कहां से आए? किन किन फिलोसोफर्स का और कहना है, गीता 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा रचित है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, आई थिंक दैट गीता हैज बीन फॉइस्टेड अपॉन महाभारता बाय शंकराचार्य। मुझे लगता है शायद गीता महाभारत में थी नहीं, बाद में शंकराचार्य ने उसको महाभारत में डाली। कुछ फिलोसोफर्स का कहना है कि नहीं, वो शायद महाभारत का ही एक हिस्सा है परंतु बाद में डाली गई। किनका कहना है कि नहीं, वो उसमें थी। और जैसे कहा, उसका जो ऑथर है, ऑथरशिप किसने लिखी, वो अभी भी संदिग्ध है। जो संसार में भगवद गीता अवेलेबल है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इसका बहुत अध्ययन किया। एडलस हक्सले पहली बार ट्रांसलेशन किया और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। एडविन एर्नॉल्ड द सॉन्ग सेलेस्टियल नाम से ट्रांसलेट किया भगवद गीता को। एक ही शास्त्र है पर कितने लोगों ने उसको अलग अलग ढंग से समझा है। एक ही शास्त्र है, कितने लोगों ने उस पर टीका की है, अनगिनत। एक ही श्लोक ले लो, उसके ही कितना विस्तार। अवतारवाद पहली बार गीता में आया, इसके पहले अवतारवाद था नहीं इस तरह से। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतारवाद कि भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म बढ़ेगा। परित्राणाय साधुनाथ, मैं अवतरित होऊंगा किस लिए, जो साधु है उनका कल्याण, उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। यह अवतारवाद का कॉन्सेप्ट पहली बार गीता में पता चला। अब तक जो बातें थी वो थी पैगंबरों की, पयंबरों की, मैसेंजर्स की, कि भगवान मैसेंजर भेजता है या खुद अवतार लेता है। ये यहां आया सबसे पहले। गीता बड़ा ही अद्भुत शास्त्र है। 700 श्लोक उसमें है, 700 श्लोक। महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, 22 से 40। चैप्टर ये गीता एक रहस्य था अब तक, और गीता के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। यह है क्या, इसी गीता को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गीता कब लिखी गई, गीता कब सुनाई गई, गीता किसने कही, कहाँ कही, क्यों कही, कैसे कही, क्या वैसे ही कही जैसी संसार में मान्यता है, क्या उसी भाषा में कही गई जिस भाषा में वो अवेलेबल है। साउथ में, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े विद्वान कभी हुए थे, अर्जुनाचार्य। उनके संबंध में ये कहानी है कि वो केवल 3 घर में भिक्षा मांगने जाते थे और वापस आते थे, और अपने घर में आकर दिन रात गीता पर टीका लिखते थे। एक्सप्लेनेशन, एक बार इतने मसरूफ हो गए, एक बार इतने व्यस्त हो गए उसमें लिखते लिखते कि जाना ही भूल गए। और उस दिन सबको भूखा रहना पड़ा। शाम को जब आए तो गीता का एक श्लोक वो पढ़ रहे थे कि भगवान जिसमें कहता है योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरे प्रति समर्पित है संपूर्ण रूपेण, मैं उसका सब कुछ करता हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। उन्होंने कहा शायद ये वाक्य ठीक नहीं है, क्योंकि आज तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह गया। तो वो एक पेन लेते, पेन वो कलम से उस वाक्य को काट देते, 2 लकीरें लगा देते और फिर कहीं चले जाते। थोड़ी देर के बाद 2 युवक वहां आते, एकदम कुमार और बहुत सुंदर, और वो अपने साथ बहुत सारा सामान खाने का वगैरह ले आते हैं। उनकी पत्नी को कहते हैं कि यह हम आपके जो पति है उन हम शिष्य है, उन्होंने ही ये भेजा है। वो कहती है अच्छा, उन्होंने कभी आज तक तो कभी जिक्र किया नहीं आप लोगों का। वो कहता है कि वो दोनों कहते हैं हम बस उन्हीं के शिष्य हैं, और वो बहुत सारा सामान लेके वहां रखते हैं खाने का और जाने लगते, और जब जाने लगते हैं उन दोनों की पीठ पर 2 लकीरें दिखती है उसको निशान किए हुए। वो पत्नी पूछती है ये क्या हुआ। वो कहते हैं आपके जो पति देव है और हमारे गुरु, वो एक बार हमसे इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने हमको पीछे मारा। 2 लकीरें है। वो कहते हैं अच्छा, यकीन नहीं होता, उनका स्वभाव तो ऐसा है नहीं। वो कहता नहीं, उन्होंने हमको मारा था, चलो कोई नहीं जाने दो। और वो दोनों चले जाते। जब अर्जुनाचार्य वापस आते हैं तो उनकी पत्नी उनसे बहुत ही नाराज होती है, बात भी नहीं करती। वो पूछते आखिर बात क्या है, तब वो बताती आपने बड़ी बेरहमी से अपने दोनों शिष्यों को मारा। वो कहता है कौन से शिष्य, मेरे कोई शिष्य नहीं है। फिर वो कौन थे जो ले आए थे इतना सारा सामान। और तब वो हंसते हैं मन ही मन और कहते हैं तुम बड़ी भाग्यशाली हो, वो कोई शिष्य नहीं थे, वो तो शायद कृष्ण और बलराम थे। और रही बात वो घाव की जो उनके पीठ पर थी, उनकी पत्नी ने उस घाव को थोड़ा मलम वगैरह लगाया था जाते समय। वो सीधा जाते और भगवत गीता खोलते और उसी श्लोक को पढ़ते हैं जिस पर उन्होंने निशान लगाया, तो देखते हैं निशान मिट चुका है। ऐसी बहुत सारी कहानियां भक्ति मार्ग में है, और इसी से भक्ति मार्ग चला है, और ऐसी ही कहानियों के वजह से गीता पर विश्वास और बढ़ा है। इसलिए कहा जाता है भगवान और गीता 2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। भगवान और उसकी वाणी एक है, 2 अलग नहीं है, एक ही है। ऐसी अद्भुत भगवत गीता है जिसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, गीता पाठ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति की लहर दौड़ाई 13वीं शताब्दी में, उसके पहले तो शंकराचार्य का द्वैतवाद था, उसके पहले बुद्धिज्म था जिन्होंने वेदों को जैसे नष्ट कर दिया, फिर शंकराचार्य ने फिर से पुनरुत्थान किया हिंदू धर्म का, और उसके बाद सभी वेदांतवादी बन गए, केवल भक्ति खत्म हो गई। ऐसे समय पर चैतन्य महाप्रभु का आगमन बंगाल में, और फिर से भक्ति की लहर दौड़ी, और फिर मीरा आई, और फिर तुलसीदास, और फिर सूरदास, और फिर से भक्तिमय संसार हो गया। वो चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में गए, देखा एक जगह प्रवचन चालू है, प्रवचन देने वाला हिंदी में सुना रहा है और जो बैठे हुए लोग थे सब तेलुगु तमिल जानने वाले। उसमें से एक बहुत भोला भाला किसान बैठा है और वो रो रहा है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। चैतन्य महाप्रभु उससे पूछते, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है जो हो रहा है? वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल इतना दिखाई दे रहा है कि रथ है, रथ पे अर्जुन बैठा है उदास शस्त्र ढालकर, और श्री कृष्ण उसे गीता समझा रहे। बस यही दृश्य देखकर मुझे आंसू आ रहे, ऐसा विश्वास है लोगों का गीता में कि केवल क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, पर केवल ये हो रहा है। भगवान की कथा है, हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी कहानी अनंत है, उसके कहे हुए वाक्य अनंत है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुलसीदास ने लिखा है, भगवान को वो लोग पसंद है जिनके कान भगवान की वाणी सुनने के लिए समुद्र की तरह है, विशाल है, चात्रक है, दिन रात सुनने की कोशिश करते हैं कहां से भगवान के वचन मिल जाए, कहां से उसकी वाणी सुनने को मिल जाए, कहां वो मिल जाए, और तृप्त तृप्त गद गद हो जाते हैं। ऐसी ये भगवत गीता है। इस गीता की बड़ी विशेषता है। सबसे पहला प्रश्न, गीता कब सुनाई गई, गीता किसने सुनाई, ये सब अतीत के प्रश्न हैं। यहां तक कुछ कुछ फिलोसोफर्स ने ऐसा भी कहा है, इवन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आई थिंक द मैन कृष्णा माइट हैव एग्जिस्टेड, मुझे लगता है शायद कृष्ण नाम का व्यक्ति शायद हुआ होगा, यह भी नहीं कहा कि वो भगवान है। इस तरह से लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में बहुत सारी बातें कही है जो डाउट क्रिएट करती है कि वास्तव में ऐसी गीता है जैसी अवेलेबल है क्या उसमें। बिल्कुल इंटरपोलेशन एक नया शब्द है इंग्लिश में, इंटरपोलेशन अर्थात एक शास्त्र लिखा गया फिर लोग उसमें अपनी अपनी बातें डालते जाते हैं। जैसे मीरा, मीरा हुई, कुछ लोगों का कहना है मीरा हुई नहीं कभी, कोई एक ऐसी कोई स्त्री होगी जिसका नाम मीरा, वो जो भक्तिन थी, सारे चमत्कार उसके ऊपर डाल दिए गए बाद में। कुछ लोगों का कहना है उसने जो लिखा हुआ है वो उसका लिखा हुआ नहीं है, दूसरे दूसरों ने लिखा और मीरा नाम डाला और उसको भक्त बना दिया महान। यह सब भक्ति मार्ग में चलता आया है। सत्य क्या है किसी को भी नहीं पता। एक महान पुरुष है, वो मर जाता है, उसके बाद उसके शिष्य उस पर बहुत सारे चमत्कार गढ़ते हैं और उसे भगवान तक पहुंचा देते हैं। वो कहते हैं ये कौन है, अवतार। किसके? वो दत्तात्रेय के अवतार। वो कौन है? वो उसके अवतार। इसीलिए तो भक्ति मार्ग का इतना विस्तार हुआ, इतना विस्तार हुआ। भारत एक ऐसा स्थान है, हर 100 किलोमीटर पर जाओ वहां पर किसी की पूजा होती है, हर 100 किलोमीटर में भगवान बदलता है। कोई एक महाराज, कोई एक संत महाराज, संत महात्मा, वो कौन थे? वो साईं बाबा के अवतार है और चमत्कार उनके साथ जुड़ी हुई। ऐसे बहुत सारे बाबा, ताजुद्दीन बाबा, ये बाबा, वो बाबा, ढेर सारे बाबा है। तो भक्ति का बड़ा विस्तार है और भक्ति का बड़ा विस्तार हुआ। एक समय था बहुत शुद्ध थी भक्ति, अव्यभिचारी। अभी जो वर्तमान में भक्ति है, अभी जो वर्तमान में शास्त्र है, सभी इंटरपोलेटेड शास्त्र है। अभी जो वर्तमान में भक्ति है उसमें क्या कर रहे हैं किसी को ही नहीं पता, बस परंपराएं चालू है। जैसे एक आश्रम है, उस आश्रम में एक गुरु है, वो ध्यान को बैठते हैं, आश्रम में एक बिल्ली है, वो बिल्ली आती है और गुरुजी को तंग करती है, कभी यहां चढ़ती है कभी वहां चढ़ती है। तो गुरुजी ने सोचा कि जब जब मैं ध्यान में बैठू इस बिल्ली को 1 घंटे के लिए बांध दू एक खंबे से, धीरे धीरे गुरुजी बीमार पड़े और उनका एक बार हम गुरुजी देहांत हो गया, फिर दूसरे गुरु आए तो शिष्यों ने जाकर बिल्ली खरीद की लाई, वो बिल्ली खो गई थी। और जब भी गुरुजी ध्यान में बैठते वो जो नई बिल्ली आई उसको बांधने लगे। फिर ये गुरुजी भी चालू मर गए। फिर ऐसी कई पीढ़ियां गुजर गई। अब उस आश्रम का ये नियम है कि जब भी कोई भी प्रमुख ध्यान में बैठे सबसे पहले तो बिल्ली होनी चाहिए और बिल्ली खरीद कर लाकर उसको बांधना है। अब कोई पूछे ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो मतलब परंपरा से चालू है, हमारी परंपरा है आश्रम की, प्रथा है, बस ऐसा ही करते हैं, पूर्वजों के जमाने से चालू है। उसी तरह महात्मा बुद्ध 6 मास तपस्या की, शरीर को बहुत सताया, दुर्बल हो गए, गिर पड़े। एक सुजाता नाम की स्त्री थी, उसने खीर पिलाई, खीर पी तब थोड़ी शरीर में शक्ति आई। फिर सोचा कि ये जो 6 साल की यह गलत है। अब एक झाड़ ढूंढा, उस झाड़ के पास बैठ गए बोधि वृक्ष और कहा तपस्या करूंगा जब तक सत्य नहीं मिल जाता, उठूंगा ही नहीं। उसी रात उनको सत्य मिला। अब जितने बौद्ध धर्म के आश्रम है, मेडिटेशन करने से पहले 2 नियम है, एक तो खीर पीना है, उस खीर पीने से कोई लंब संबंध नहीं है मेडिटेशन का, और दूसरा एक झाड़ चाहिए। झाड़ नहीं है तो लेके आओ उधर लगाओ, ये है भक्ति मार्ग। क्यों करते हो, क्यों करते हैं मतलब हमारे गुरुजी ने कहा है, कहां लिखा है, लिखा नहीं है, प्रथा है, परंपरा है, चालू है सदियों से, बाबा आदम के जमाने से, हमारे पूर्वज दादा परदादा सभी करते थे। क्यों करते ये पूछा नहीं जा सकता। इसके लिए भक्ति मार्ग में ऐसी विचित्र विचित्र कहानियां हैं, ढेर सारी कहानियां हैं, ऐसा और कहीं नहीं है, भारत में ही है ये सब। अगर ऐसा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में एक शास्त्र है गीता, उसको लोग ऐसे ही थोड़ी सा छोड़ देंगे, उसके साथ भी बहुत कुछ करेंगे। जन सामान्य तो मान लेते हैं, पर जो विद्वान है वो अध्ययन करते हैं और उनको पता चलता है सत्य तो कुछ और है, और सत्य क्या है ये कोई बता नहीं सकता। कौन सा शास्त्र सत्य है ये कोई बता नहीं सकता, बताएगा केवल वही जिसने वो मुखारविंद से जिसके निकला है। सत्य केवल एक परमात्मा ही है, जब तक वो धरा पर नहीं आएगा वो कोई बता नहीं सकता कि विच इज राइट, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज अनट्रू। एडमंड बर्क नाम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार था, उसने ये संकल्प किया कि विश्व का पूरा इतिहास मुझे लिखना है, सारी सभ्यताएं, भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सारी सभ्यताओं का सारा इतिहास मुझे लिखना है। क्या क्या हुआ, सिकंदर कब आया, चाणक्य कब आया, चंद्रगुप्त मौर्य कब आया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने क्या किया, जूलियस सीजर ने क्या किया, हर देश का इतिहास। और उसने 30 साल लगाए इतिहास लिखने में, एक दिन रात को इतिहास लिख रहा था। और इतिहास लिखना बहुत बड़ा काम है, कितने फिगर्स चाहिए उसमें, 1522 में क्या हुआ, 1900 इतने में क्या हुआ, इस तारीख को क्या हुआ, बहुत बहुत अध्ययन चाहिए। और एक रात जब लिख रहा था अचानक आवाज आई उसके घर के पीछे से, वो दौड़ के भागा, देखा एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, अभी अभी ताजा ताजा किसी ने छुरा घोप दिया है छाती में, लोग सारे खड़े हैं, खून करने वाला भाग चुका है, अभी अभी हुआ है, शोरगुल है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ, जितने लोग वहां उपस्थित थे सभी चश्मदीद गवाह, हरेक अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी बताता है जो कि सामने हुआ है, अभी अभी खून, कोई कहता है आत्महत्या है, कोई कहता है इसने किसी ने मारा है, इसने मारा, कोई कहता है मारने वाला भाग गया, कोई कहता है सुबह मर्डर हुआ, अभी नहीं हुआ। जो चीज आंखों के सामने अभी हो रही है उसके लिए इतने मत, तो वो सोचता है मैंने ये जो 30 साल से लिख रहा हूं, जो मैंने देखा तक नहीं, जो कब हुआ मुझे पता नहीं, केवल लोगों की बातों के आधार पर लिख रहा हूं, चाइनीज विस्पर्स, एक ने कहा दूसरे ने माना, ये क्या सत्य होगा? इसलिए इसमें सत्य नहीं हो सकता। वो आकर सब कुछ जला देता है, सब व्यर्थ हुई मेहनत, क्योंकि सत्य किसी को ही नहीं पता। आज अगर एक चीज यहां हो जाए, इस हॉल में यहां पर कोई एक चीज हो जाए, यहां से जाने के बाद आप जितने लोग हैं अलग अलग कहानियां दूसरों को सुनाओगे, यहां क्या क्या हुआ, और सोचो आपने किसी और को सुनाया, उसने तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, जो कहानी कहां से कहां पहुंच जाएगी, है ना ऐसा कि नहीं? अगर ऐसा है और ये मनुष्य का स्वभाव है तो किस शास्त्र को सत्य माने? एक पुजारी सोया हुआ है मंदिर में और उसके मुख में एक पंख गिरता है, पंख उठता है, आश्चर्य होता है पंख कहां से गिर गया, घर पे आकर अपनी पत्नी को बताता है मेरे मुख से ये पंख निकला। उसकी पत्नी कहती है अच्छा ये पंख, ये तो कबूतर का है, तुम्हारे मुख से पंख निकला, किसी को बताना मत ये बात, बड़ी गहरी बात है, नहीं तो क्या लोग कहेंगे, हम इतने शाकाहारी और ये पंख कहां से निकल गया, और ये पक्षी तो इस इलाके में पाया ही नहीं जाता है। वो कहता है, घबरा जाता है, अच्छा ऐसा है, अपनी पत्नी को कहता है तुम ये बात किसी को मत बताना। वो कहती है बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अपने घर की बात है। पत्नी को रात भर नींद नहीं आती जब तक किसी को बता ना दू। सुबह सुबह उठती है, पड़ोसी इनके पास जाती है और कहती है कि मेरे पति सो रहे थे जो मंदिर के पुजारी है, उनके मुख से पंख निकला। वो कहती है क्या बात कर रही हो? वो पत्नी कहती है किसी को बताना मत। वो कहती मैं क्यों बताऊं? और उसको बेचैनी होती, उसका पति शाम को आता है। वो कहती है कि हमारे जो पुजारी है उनके मुख से पंख का एक गुच्छा निकला, पंख का एक गुच्छा पूरा मुंह से निकला। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, हमारे पुजारी इतने धार्मिक, इतने शाकाहारी, और पंखों का गुच्छा? उसको बेचैनी होती है, वो अपने मित्रों को बताता है, बात और फैलती है, बात यहां तक फैल जाती है कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा हमारे जो पुजारी थे सो रहे थे, मुख से एक कबूतर निकल गया पूरा। और 2-3 दिन के बाद बात इतनी फैल जाती है कि लोग कहते हैं हमारे जो पुजारी है जब सोते हैं उनके मुख से अलग अलग प्राणी निकलते हैं, और सारा गांव इकट्ठा होता है कि हमें भी देखना है क्या क्या निकलता है। वो कहता है पुजारी कुछ नहीं निकलता, और लोग उसकी थोड़ी मानेंगे, अफवाह फैल चुकी है। वो कहते हैं निकलता है, हमको दिखाओ। पुजारी रातों रात शहर छोड़ के चला जाता है। ये है संसार, बात होती है कुछ और बात का बतंगड़ बन जाती है कुछ। जब ऐसा संसार है तो क्या कोई शास्त्र अछूता रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता कोई भी शास्त्र। दो शास्त्र ले लो, दोनों रामायण, एक वाल्मीकि रामायण, एक तुलसीदास रामायण, दोनों में कितना अंतर है। एक रामायण में राम पुरुषोत्तम है, दूसरे रामायण में राम अवतार है। एक रामायण में राम स्पर्श कर रहा है अहिल्या को, दूसरे रामायण में वो स्पर्श नहीं, उसकी धूल से ही अहिल्या का उद्धार हो रहा है। चरण रज चाहती कृपा करो रघुबीर, केवल चरण रज चाहती। एक रामायण ये कहता है, एक रामायण वो कहता है। और टीवी सीरियल की तो बात ही छोड़ दो, उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी की भी प्रेम कहानी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये थी भयंकर भूमिका। अब किसको सत्य माने? कुरुक्षेत्र की जो भूमि है आज दिल्ली उधर, और जिस कुरुक्षेत्र का वर्णन है और जितनी अक्षय योनि सेनाएं बताई है, वो अगर कैलकुलेशन किए जाए तो वो पूरी जमीन जो है उस पर वो नहीं समा सकती। चलो ये छोड़ो, पांडव ले लो, पांच पांडव, उनका जन्म कैसे हुआ, बड़ा विचित्र जन्म है सबका। उनका छोड़ो, दुर्योधन का जन्म ले लो, 100 कौरवों का जन्म ले लो, क्या ऐसा हो सकता है? वो घड़ा और उसमें से निकल रहे एक 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 का जन्म ले लो, सब विचित्र जन्म है सबके सब। व्यास का जन्म ले लो, विचित्र जन्म है सबके, ऐसा कभी हो नहीं सकता। पांडु और युधिष्ठिर का जन्म ले लो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, मेडिकल साइंस के अगेंस्ट है। जो कुछ अद्भुत सी बातें उसमें दिखाई है, एक लॉजिकल माइंड उसे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर सत्य क्या है? सत्य केवल वो बता सकता है जो सब कुछ जानता है। सत्य केवल उसी के पास है जो सर्वज्ञ है, जो सारे खेल को साक्षी होकर देख रहा है। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद कहता है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लोगों ने मूर्तियां बनाई, किसकी, देवताओं की, सबकी मूर्तियां बनाई। अगर इतिहास को देखा जाए, 8वीं शताब्दी तक कृष्ण पूजा, कृष्ण भक्ति का कोई नाम निशान नहीं है। कृष्ण की भक्ति चालू हुई 8वीं शताब्दी के बाद, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, केवल शिव की पूजा हो रही है तब तक, केवल शिवलिंग की पूजा हो रही है, कृष्ण का तो नाम निशान नहीं है। और राधा का तो बहुत बाद में डाला गया, और राधा कृष्ण की भक्ति चालू हुई। श्री राम जी का तो नाम ही नहीं है जब तक तुलसीदास नहीं आए, राम भक्ति की लहर फैली। भागवत में राधा का नाम ही नहीं है, पूरी भागवत में राधा नाम की कोई गोपी नहीं है। ये सब एडिशन हुआ है बाद में, बहुत सारा कहीं दिखाया है। राधा तो पहले से ही विवाहित थी, कृष्ण बहुत छोटा बच्चा था उसके सामने, राधा की उम्र बहुत ज्यादा थी। किसको माने, परंतु हम जन्म जन्म से भक्ति करते आए, और जिसका जिस घर घर में जन्म होता है वो उसी को सत्य मानता है। राम जी के घर, भक्त के घर में जन्म हुआ तो राम ही भगवान है, कृष्ण के उधर हुआ तो कृष्ण ही भगवान है, शंकर जी के उधर हुआ तो शंकर भगवान है। इस्लाम में हुआ किसी का जन्म, ये सब बकवास है, काफिर, कुफ्र करने वाले। तलवार लो और खत्म कर दो सारी मूर्तियों को, बुत परस्ती, युद्ध हुए धर्म के नाम पर, क्यों, किसी कारण? विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा, भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं, भक्ति की मान्यता है। परंतु इस भक्ति का जितना विस्तार हुआ, आत्माएं नीचे उतरती आई, भक्ति नीचे गिराते 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 हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जब किसी को कुछ पता नहीं भगवान कौन है। ऐसा जब सतयुग बीतता है, द्वापर त्रेता, द्वापर और कलयुग का अंत होता है, तब कहीं जाकर भगवान स्वयं आते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं जो आज तक किसी को नहीं दिया था। और उसके आने का तरीका भी कितना गुप्त है। अवजानंती माम मुड़ा मानुषी तम आश्रित, हे अर्जुन, मैं जब आता हूं, अवजानंती माम मुड़ा, मूर्ख मेरा उपहास करेंगे, वो जान ही नहीं पाते। एक साधारण सा व्यक्ति, दादा लेखराज, सिंध हैदराबाद, उसके शरीर में किसी शक्ति ने प्रवेश किया, वो खुद भी भगत है, उसके भी इतने सारे 12 ढेर सारे गुरु है, और अचानक साक्षात्कार होने लगे। कभी कृष्ण दिख रहा है, कभी देवताएं हो रहे, कभी विनाश दिख रहा है, और उसके तन में आकर एक शक्ति बोल रही है, कुछ ऐसा ज्ञान जो किसी शास्त्र में नहीं है, कुछ ऐसा ज्ञान जो किसी धर्म स्थापक ने नहीं सिखाया, एकदम न भूतो न भविष्यति। और तो और कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं, सबको साक्षात्कार क्या हो रहा है, और धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट हुआ और पता चला, ये जो शक्ति उस तन में प्रवेश कर रही है, ये स्वयं भगवान है, और वो ज्योतिर्मय है, और वो ज्योति बिंदु है, और वो संसार उसका घर नहीं, परम धाम से वो आता है। अब तक मान्यता थी ठिक्कर पत्थर सब जगह वो व्याप है, सियाराम मई सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, ये सब श्लोक धारणाओं ने ये सिद्धांत संसार में फैला दिया कि भगवान सर्वव्यापी है. ईश्वर सर्वभूतान हृदयशील तिष्ठति अर्जुन, हे अर्जुन ईश्वर हर हृदय में स्थित है. ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे ऐसी कहावतें, दोहे, और मनुष्य का पतन ही हुआ. तब भगवान का अवतरण कलयुग के अंत में ब्रह्मा तन में, जिस तन में आया उस तन का भगवान ने नाम दिया आज से ये ब्रह्मा है. ब्रह्मा वो नहीं है जो शास्त्रों में दिखाया है, जिसकी चार भुजाएं है, कमल पुष्प पे है, ब्रह्मा लोक में है, वो ब्रह्मा नहीं है. ब्रह्मा ये दिया नाम, और उसके मुख से जो ज्ञान सुनाया गया वो है भगवत गीता का ज्ञान. ये है सच्चे गीता का ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर देता है. और कितनी सारी बातें बाबा ने उसमें क्लियर की, ऐसी कुछ बातें हम लेंगे जो भगवान ने जिस पर प्रकाश डाला. अब तक संसार क्या मानता था और भगवान ने क्या क्या कहा. सबसे पहली बात आत्मा. भक्ति में या फिर सन्यास मार्ग में या फिर वो जो गीता है उसमें ये मान्यता है कि आत्मा, एक मान्यता है संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, दूसरी मान्यता है आत्मा सर्वव्यापी है, तीसरी मान्यता अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है. एक आत्मा के बारे में कितने मत है. किसी का मानना है कि आत्मा यहां है हृदय में स्थित है, एक का मानना है आत्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ रहते हैं. यह संसार की मान्यता है. संसार का सारा ज्ञान आत्मा पर खत्म होता है, और भगवान जब आते हैं तो ज्ञान आत्मा से चालू होता है. भगवान ने कहा आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त नहीं है, आत्मा हृदय में नहीं है, आत्मा कहाँ है, भ्रुकुटी के मध्य में यहां पर स्थित है, और वो अदृश्य है. नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसे शस्त्र भेद नहीं सकते, वो आत्मा है. और वहां तक रुका नहीं ज्ञान, ज्ञान तो वहां से चालू हुआ. और जिस यज्ञ की भगवान ने स्थापना की उसी को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ये किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनैलिटी वर्शिप. ये स्वयं भगवान का ज्ञान है. ये जो भोली भाली माताएं थी जिनको ना संस्कृत आता है ना हिंदी ढंग से समझती थी, उनको भगवान को उठाना था. वो जो माता है जिनके लिए शास्त्रों ने कहा, क्या कहा था शास्त्रों ने माताओं के लिए, बहनों के लिए, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का द्वार है, बिल्कुल चेहरा ही नहीं देखना उनका. पर ये शास्त्र पुरुषों ने लिखे थे, ये दूसरी बात है. अगर बहनों ने लिखे तो लिखा होता ये पुरुष नरक का द्वार है ये दूसरी बात है. जितने संसार में शास्त्र लिखे गए सभी पुरुषों ने लिखे, कोई भी स्त्री ने कोई शास्त्र नहीं लिखा. जितने धर्म स्थापक आए सभी पुरुषों ने लिखे, पुरुष थे, एक भी स्त्री नहीं. जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उसमें पता है एक तीर्थंकर स्त्री है, पर उन्होंने उसको स्त्री का नाम बदल के उसको पुरुष बना दिया, क्योंकि स्त्री शरीर में तो मुक्ति संभव ही नहीं है. पहले स्त्री पश्चाताप करो, फिर अगला जन्म पुरुष का जब होगा तब कहीं जाके तुमको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा भी कहा है. स्त्री शरीर मतलब आधा शरीर है, आधा, हाफ, अर्ध हो, पूरे नहीं हो. तो भगवान का अवतरण हुआ संगम युग पर. भगवान युगे युगे नहीं आता है, उसमें कहा है मैं युगे युगे आता हूं. यहां तक कि दशो अवतार में दसवा अवतार महात्मा बुद्ध को बताया, और जो बुद्ध के फॉलोअर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ही स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस. वो कहता है बुद्ध को विष्णु में क्यों डाला, हिंदू ने बुद्ध को ही दसवा अवतार बता दिया. पर जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो कभी नहीं मानते ये. अगर ऐसा होता तो मानना चाहिए, पर वो लोग ही मानते, बिल्कुल नहीं मानते. वो कहते बुद्ध, हमारा बुद्ध अपने अलग है, वो कोई भगवान नहीं है, वो पुरुष है. पर बहुत ऊंची अवस्था में प्राप्त किया उन्होंने ज्ञान, ये मान्यता है. संगम पर भगवान आते, एक शरीर का आधार लेते और उस शरीर द्वारा उस मुखारविंद से ज्ञान सुनाते और वो ज्ञान सादी सिंपल भाषा में सिखाते, क्लिष्ट संस्कृत भाषा में नहीं, जो लोगों को समझ में ही ना आए। और उस ज्ञान से कितने सारे लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। आज इस संस्था में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। एक समय था जब भगवान आए और ब्रह्मा का आधार लिया, वो जो ब्रह्मा जिसके इतने गुरु थे और वो ब्रह्मा जितना इतना प्रतिष्ठित था, उसकी इतनी ग्लानि की लोगों ने उसको मारने की कोशिश की। ऑब्जर्वर करके एक न्यूज़पेपर था, द सिंध ऑब्जर्वर, उसमें दो शब्द आए दादा लेखराज के लिए कि ये जो दादा लेखराज है ना, ही प्रैक्टिसेस सॉर्सरी एंड लेचरी। सॉर्सरी अर्थात जादू टोना, बंगाल जाता है वहां से जादू टोना सीख के आया है। लेचरी अर्थात कामांध, कामुक व्यक्ति है ये, इससे तो दूर रहना चाहिए, हमारी बेटी बहुओं को इससे दूर रखना है। इतनी ग्लानि की उसकी, उसको मारने की कोशिश की, सब कुछ किया उसके विरुद्ध। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कोई भी संस्था जब चालू होगी तीन अवस्थाओं से गुजरनी पड़ेगी। कोई भी क्रांति संसार में होगी तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला रेडिक्यूल, लोग निंदा करेंगे, हंसेंगे। दूसरा विरोध, भयंकर विरोध करेंगे, कुछ भी नया करो, पहले निंदा करेंगे फिर विरोध करेंगे। और तीसरा स्वीकार, एक्सेप्टेंस, लास्ट में स्वीकार करेंगे। वही तीन चीजें इस संस्था के साथ हुई जब नई नई संस्था चालू हुई और भगवान गीता ज्ञान देने लगा और कहा यही सच्ची गीता है, वो नहीं वो जो रामायण है, दैट्स अ नॉवेल। लोग चिढ़ गए, सबसे ज्यादा चिढ़ तो आर्य समाज गए, क्योंकि वो तो स्वामी दयानंद अर्थात सत्यार्थ प्रकाश सारा कुछ वेद और उसके ऊपर आधारित है और ये वेद विरोधी, बहुत चिढ़ गए। जहां जहां ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम होते थे वो सब आते थे, वहां पर पर्चे बांटते थे ब्रह्मा कुमारीज पाखंड। भयंकर विरोध, ऐसे विरोध से ये संस्था, ब्रह्मा कुमारी बहने जाती थी कहीं पर, दरवाजा बंद, सफेद साड़ी वाली दिखी मतलब बंद करो, जादू करेगी कुछ, उससे आंखों में आग बिल्कुल मत मिलाना, अफवाहें फैलती गई। परंतु जो सत्य है वो सत्य है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इतने विरोधों के बाद भी जो ज्ञान भगवान ने दिया वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बड़ा कि आज सारे विश्व में फैल गया। और कहां कहां ऐसा विरोध हुआ, जैसे हापुड़, हापुड़ में ऐसा हंगामा किया लोगों ने, सेवा केंद्र सेंटर बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, वहां के जो भाई था उसको गधे पे बिठा के घुमाया, गले में सांप डाल दिया, ऐसा विरोध किया। फिर भी ये कार्य रुका नहीं, क्योंकि ये सत्य कार्य था, सत्य परमात्मा का कार्य था। और ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और यही सच्ची गीता है, यही सच्चा ज्ञान है गीता का, जो कि भगवान अब सुना रहा है। वो जो 18 अध्याय गीता में बताए हैं वो ब्रह्मा के जीवन के अध्याय है, जो कि प्रथम पुरुष बना जिसने ये ज्ञान अपने जीवन में संपूर्ण आत्मसात किया और 18 जनवरी 69 में अव्यक्त हुए। तो गीता कब सुनाई गई? संगम युग पर सुनाई गई। गीता किसने सुनाई? कृष्ण ने नहीं, कृष्ण पुरुष है, मनुष्य है। वो कैसे सुना सकता है? कृष्ण है कौन, इसका सत्य ज्ञान तो अब प्राप्त हुआ है। कृष्ण भक्ति में डूबे हुआ पूरा संसार है। सबसे अधिक ज्यादा भक्ति अगर किसकी होती होगी तो कृष्ण की होती है, सबसे ज्यादा भक्ति, सबसे ज्यादा मंदिर श्री कृष्ण के, लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। और जितने झगड़े आज तक द्वापर से अब तक धर्म के वजह से हुए और किसी के वजह से नहीं हुए। 2500 वर्ष में 15,000 से ज्यादा युद्ध हुए हैं, मोर देन 15,000 युद्ध ऑन रिकॉर्ड। मतलब अगर सारा इतिहास देखो, केवल 300 दिन थे जब युद्ध नहीं हो रहे थे लगभग, और वो 300 दिन थे युद्ध की तैयारी के। हर दिन युद्ध ही युद्ध कर रहा है, और सबसे ज्यादा युद्ध किसने किए? नास्तिकों ने नहीं, आस्तिकों ने। और किस नाम पे किए? धर्म के नाम पर किए। क्यों किए? क्योंकि सत्य का पता ही नहीं। सत्य तो अब उद्घाटित हुआ है जब भगवान आते हैं, तो गीता ज्ञान अब दिया गया, और या भगवान अब दे रहे हैं। किसने दिया? स्वयं जो निराकार परमात्मा है, और वो कहां रहता है? न शशांक नो पावक, वो कहां रहता है? न तद भाषय ते सूर्य न शशांक न पावक, यद गत्वा निवर्तन्ति तद धामम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा धाम है जहां न सूर्य है, न चंद्रमा है, न सितारे है। वो रहता है परम धाम में, वो धरती पर आता है संगम युग पर, वो ब्रह्मा तन का आधार लेता है और उसके मुख से ज्ञान सुनाता है, और उस मुख से ज्ञान को सुनकर जिनका जन्म हुआ है वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं, जो कि हम सब हैं। इसके लिए गीता ज्ञान वो नहीं जो शास्त्रों में है, गीता ज्ञान अब दिया जा रहा है और जिससे इतने सारे ब्राह्मणों का जन्म हुआ। इसलिए इस संस्था को भगवान ने क्या कहा? ये यज्ञ है। राजस्व अश्वमेध ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है ये। और ऐसा अद्भुत ज्ञान था कि यह ज्ञान किसी ने नहीं दिया आज तक। ये पहली बार किसी ने बताया कि तुम देवता थे। आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है देवता थे, असुर थे, स्वर्ग था, नरक था। किसी को कुछ पता नहीं स्वर्ग कहां है, नरक कहां है। भगवान ने कहा ना कोई ऐसा कोई स्वर्ग है उधर, ना कोई ऐसा नरक है। ये दुनिया ही इस समय नरक है, और ये दुनिया ही नरक ही स्वर्ग बनेगा। ये ज्ञान उसने दिया। ये 5,000 साल का चक्र है, ये ड्रामा है, ये रिपीट होता है, ये सीढ़ियां है। ज्ञान दिया कि मनुष्य आत्मा जानवरों के आत्मा में नहीं, शरीर में नहीं जाती। क्या ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिसने याद किया कि मैं पिछले जन्म में शेर था? सुना कभी अनुभव? पुनर्जन्म की कहानियां हैं, पर कभी किसने ये सुना कि मैं पिछले जन्म में बकरी थी? कभी नहीं। ये नई बात बाबा ने बताई, भगवान ने बताई। तो इस ज्ञान में जितनी बातें हैं, आत्मा की, परमात्मा की, सृष्टि चक्र की, युग की, पुनर्जन्म की, सब 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 नई बातें हैं। और जिन्होंने ये ज्ञान को सुना, और सबसे बड़ी बात, ज्ञान कितना भी कोई सुना है, संसार में भी अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाने वाले लोग हैं, पर उनके जीवन में धारणा है जीरो। कोई बोल बहुत अच्छा सकता है, बोलना तो कला मात्र है, भाषण का धारणा से कोई संबंध नहीं है। जैसे एक व्यक्ति किसी सभा में गया, उसने नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर 1 घंटा प्रवचन किया कि मांसाहार खाने से क्या क्या नुकसान होता है, बहुत धुआंधार भाषण कर दिया। और बैठा हुआ एक स्टूडेंट था, उसको लगा इतना इन्होंने भाषण किया, मुझे इनके जीवन को देखना है क्या करते हैं ये। तो उसने उसका पीछा किया, प्रवचन पूरा हुआ, भाषण पूरा हुआ, लेक्चर, और वो पीछा करते 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 गया तो देखा ये जो प्रवचन करता था वक्ता, वो एक रेस्टोरेंट में गया, और रेस्टोरेंट में उसकी पत्नी बच्चे पहले से ही थे, उन्होंने नॉनवेज ऑर्डर किया। तो ये स्टूडेंट जैसे ही पहुंचा और देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, और सीधा उनके पास गया और उनको कहा, अभी तो आपने 1 घंटा नॉनवेज के विरुद्ध भाषण किया और आप खुद खा रहे हो। तो उन्होंने कहा, मैंने लोगों से कहा नॉनवेज मत खाओ, ये थोड़ी ना कहा मैं नहीं खाता हूं। मैं तो उनसे कह रहा था मत खाओ, ये कहा मैंने कि मैं नहीं खाता हूं। भाषण देना आसान है, पर पालन करना कठिन है। यहां एज अ डॉक्टर हमने देखा कितने पेशेंट्स हमारे पास रोज आते हैं जो एडिक्ट्स है, अल्कोहल लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, तंबाकू, सब 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 बीमारियां हैं और छूटती नहीं उनको। कितनी कोशिश करते हैं, हार्ट अटैक आ गया, अभी तक 50 बीड़ी रोज पीते थे, हार्ट अटैक आने के बाद 25 तक आया है, जबकि उनको डराते हैं हम अगला हार्ट अटैक आएगा, फिर भी छूटती नहीं, क्या करें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इतने सारे ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, हम पूछते हैं कभी बीड़ी पीते थे? हां बहुत पीते थे पहले, ज्ञान में आने से पहले, और जैसे ही ज्ञान में आए सब खत्म, एक दिन में छोड़ दिया, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं। आप एक भाई का अनुभव सुनना जो यूट्यूब पर भी है, नेपाल का एक भाई, हम नेपाल गए थे, वो भाई से मुलाकात हुई, एकदम युवा हमारे जैसा कुमार, उसके जीवन का ऐसा भयंकर अनुभव है, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो गुंडा जैसा था, बड़े बड़े बाल थे उसके पहले, अभी तो एकदम एकदम आदर्श ब्रह्मा कुमार जैसा है, बड़े बड़े बाल, यहां टैटू, यहां टैटू, दोनों जेबों में चरस, गांजा, अफीम, दिन रात पीता था, बाइक पे घूमता था, और वो जो साधु रहते थे ना उनको भी मिलता था, उनके पास कुछ माल मिल जाता था कभी कभी उसको, बहुत रेयर अफीम गांजा इतना पीता था, इतना ऐसा कोई व्यसन नहीं था जो उसको नहीं था, और घर के बहुत अमीर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, दोस्त थे, बाइक ली और चले। उनका सुबह जो रात का सोने का समय था वो सुबह 5 या 6 बजे का था, रात भर भटकना, आवारा गर्दी। वो व्यक्ति एक दिन ब्रह्मा कुमारी बहन आई उसके घर में, उसकी मां ज्ञान में चलने लगी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो उसको कहा तुम आओगे सेंटर पर? उसने कहा ठीक है आऊंगा। गया और वहां का वातावरण देखकर उसको शर्म आई थोड़ी सी, फिर घर आया, फिर मन में कुछ कुछ हलचल होने लगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, पर छोड़ू कैसे, इतना जल्दी छूटता नहीं है। एडिक्शन में पुनर्व्यसन केंद्र होते, लोग 6-6 महीना भर्ती रहते फिर भी नहीं छूटता, भर्ती होने के बाद छुट्टी होती है फिर चालू करते। और उसने अनुभव सुनाया था कि फिर मैंने एक बार ऐसा संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए जेब में भर दिए दोनों, इधर गांजा इधर चरस, और यह संकल्प किया इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा, जेब में है दोनों पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और पूरा 24 घंटे देखा क्या होता है। और उसने कहा मैं ऐसे बिस्तर पर पड़ा था, इच्छा हो रही है खाऊं, पर संकल्प कर लिया कि नहीं, रोता रहा रात भर, और सुबह उठा तो ऐसा लगा जैसे नया जन्म हो गया, जैसे बाबा की कोई शक्ति किरण आ गई, और एक धक से छोड़ दिया सब कुछ। ये चमत्कारी कहेंगे, ऐसा होता नहीं है संसार में, यह परमात्म शक्ति का चमत्कार है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन, एक बहुत बड़े पोस्ट पर कोई भाई था, उसको कहने लगी कि आप माउंट अबू चलिए। उसने कहा मैं चलूंगा पर मेरी एक शर्त है, मैं सिगरेट पीऊंगा, लेके जाना है तो चलो। उसने कहा अच्छा, तो एक काम करना, हमारा जो कैंपस है उसके बाहर जाके जब भी आपको पीने की इच्छा हुई आप मुझे बताना, तो मैं आपको वहां ले जाऊंगी, फिर आप बाहर जाना पी के फिर वापस आ जाना। उसने कहा ठीक है। फिर वो बहन उसको लेके गई शिविर में, वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, शायद कमिश्नर। तो पहला दिन शाम को वो बहन को मिला, कहा कि मुझे पीना है, तो बहन उसको लेके गई, दरवाजे पर 2 नंबर पर बहन जी खड़ी रही, वो बाहर गया पी के वापस आया। पहली बार उसने रिक्वेस्ट किया, फिर दूसरे दिन भी रिक्वेस्ट किया, अब तीसरे दिन उसको शर्म आने लगी क्योंकि तब तक तो प्रवचन भी सुन रहा था हॉल में बैठकर, फिर उसको हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, और पता नहीं क्या हो गया कि उसने बस संकल्प कर लिया आज से मैं छोड़ता हूं, और छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। ऐसे ऐसे अनुभव आत्माओं को जो हुए, दे आर नथिंग लेस देन मिरेकल. ये परमात्मा शक्ति है, ये परमात्मा ज्ञान है जो ये कर सकता है. ज्ञान अर्थात वो हो जो जीवन बदल दे, ज्ञान अर्थात वो हो जो धारणा स्वरूप बना दे. ज्ञान केवल रटने रटाने के लिए, भाषण झाड़ने के लिए नहीं है, जो जीवन में झलकता हो. और भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया संपूर्ण पवित्रता का, प्यूरिटी का. तो गीता ज्ञान अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सबसे महान ज्ञान, जो भगवान का खुद दिया हुआ ज्ञान है, और वो जो अब दे रहा है, अब वो आया हुआ है संसार में. वो कहीं उस रूप में नहीं आता है जैसे गीता में दिखाया है, विभूति योग, हजारों सूर्य जैसा चमक रहा है, हजारों हाथ है, हजारों मुंह है. भगवान ऐसा नहीं होता है. पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, उसको हटाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, वो हमारे जैसा ही आता है किसी तन में और वाक्य उच्चारण करता है. तो गीता ज्ञान अब दिया जा रहा है, गीता ज्ञान ब्रह्मा तन द्वारा दिया जा रहा है, गीता ज्ञान हिंदी में दिया जा रहा है, गीता ज्ञान से सद्गति होती है, गीता ज्ञान इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और इसी ज्ञान से आत्मा का उद्धार होगा. और जो रहस्य इसमें बाबा ने बताया है, वो कहीं पर भी नहीं है. जिन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सीधा ज्ञान में आ गए. जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, उनको कंपेयर करना पड़ा, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है. चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, बाबा ने कहा अब तक तुमने जो पढ़ा सब भूल जाओ, सब भूसा है, अब मैं जो सुनाता हूं वो सुनो. तो इस गीता ज्ञान का अध्ययन करना है, इसको समझना है, लॉजिक का प्रयोग करना है. बाबा ने यहां तक कहा है कि मैं जो सुनाता हूं अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है ये, कि मैंने जो बोल दिया और तुमने मान लिया. उसका अध्ययन करो, उसको स्टडी करो, लॉजिकली थिंक करो कि ये ऐसा है तो ऐसा. और लास्ट एक बात आप सबसे कहेंगे कि इस यज्ञ में भगवान ने बहनों को निमित्त बनाया है. जिन स्त्रियों को संसार ने नरक का द्वार कहा और जिन माताओं को संसार ने ठोकरें मारी, उसको भगवान ने ठाकुर बनाया. और ऐसी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आगे रखा और उनके द्वारा ये सारा ज्ञान सारे विश्व में फैला. मुझे याद आती है एक बात जो विवेकानंद ने कही है, जो भविष्यवाणी के रूप में थी. उनकी मृत्यु 1902 में हो गई. यज्ञ की स्थापना, इस संस्था की स्थापना 36 और 37 में हुई. उन्होंने कहा था किसी एक प्रवचन में विदेश में, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी. वो नारी कौन है? यही हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें. इसलिए सब लोग, सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे. कौन बहने हैं ये सभी? कौन है ये ब्रह्मा कुमारी बहने? एक बार सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें खड़ी हो जाएंगी, जो सभा में बैठी है, जो सेंटर निवासी बहनी है, सेंटर निवासी बहनें, केवल बहनें, जो बाहर है वो सामने आ जाए. बहन जी अगर है तो वो भी. कौन है ये सब बहनें? कौन है? कौन बहने हैं ये सब? ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है. ये वही है जिनको भक्त पुकार रहे हैं, ये वही है जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने यौवन को, अपने सर्वस्व को यज्ञ की वेदिका पर स्वाहा कर दिया। क्या यह साधारण हो सकती है? अगर ये चाहती तो संसार में बहुत कुछ कर सकती थी। अगर ये चाहती तो ये भी नौकरी कर सकती थी और पैसे कमा सकती थी। ये चाहती तो ये गृहस्थी बन सकती थी, बच्चों की माँ और किसी की बीवी, और संसार और गृहस्थ जीवन बिता सकती थी। परंतु सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं, सारी संसारिक वासनाओं को स्वाहा कर कर परमात्मा वेदिका पर अपने जीवन को अर्पित कर दिया। ऐसी अर्पिता, ऐसी निवेदिता है, ऐसी समर्पिता है इस संसार की सबसे महान आत्मा है। इसलिए उनको हम सब की तरफ से कोटि कोटि नमन। जिन्हों का अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, अपना कोई व्यक्तिगत सेविंग नहीं, जो कुछ है सब कुछ विश्व कल्याण के लिए है। और इनको निमित्त किसने बनाया, चुना किसने? संसार में असंख्य नारियां थी, असंख्य स्त्रियां थी, इनको चुना। जिसने चुना वो स्वयं भगवान था, जो भगवान की चुनी हुई है। वो साधारण नहीं हो सकती। इसलिए वो जगत माताएं हैं, वो जगत जननी है। यदि इसलिए उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई कुसंकल्प, कोई षड्यंत्र, कोई ग्लानि की बात, कोई विकारी दृष्टि, कोई परदर्शन, परचिंतन की बातें, ये सोचना कि ये हमको क्या सिखाएगी, इनके पास कम अनुभव, अनुभव तुम्हारे पास ज्यादा होगा, पर इनकी पवित्रता अनटच्ड है। बुद्धि तुम्हारे पास ज्यादा होगी, ज्ञान शायद इनसे ज्यादा तुम्हारे पास होगा, पर ये बाल ब्रह्मचारिणी है। इसके लिए सभी इनका बहुत बहुत सम्मान करें हमेशा के लिए। तो ऐसा ये गीता ज्ञान जो भगवान ने दिया है और इन आत्माओं को निमित्त बनाया है, और हम सभी स्टूडेंट्स इस ज्ञान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। यदि किसी के मन में गीता के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, हम ये नहीं समझ रहे आगे क्या बोले। कोई भी किसी भी शास्त्र के बारे में कोई भी प्रश्न, और कहीं से भी अगर कोई है तो पूछ सकते हैं, तो हम उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न? सभी प्रश्नों से पार? इन्होंने प्रश्न पूछा है, एक कहावत लिखी है, इसका अर्थ पूछा है। वैसे इसका गीता से डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर लिखा है, वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर इज कॉल्ड स्ट्रेस। हम बहुत परिश्रम करते हैं और जिसके लिए हम परवाह नहीं करते उसे तनाव कहा जाता है। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन। और हम बहुत जब परिश्रम करते हैं पर वो चीज हमें बहुत प्रिय है, तब उसे पैशन कहा जाता है, इसको एक्सप्लेन करो, ऐसा प्रश्न है। सिंपल सी बात है कि एक विद्यार्थी है, वो मैथ्स की स्टडी करता है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, फिर भी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम है, स्कूल है, तनाव, टेंशन। वही विद्यार्थी जिसको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और जब क्रिकेट देखता है तो उसके लिए पैशन है, जुनून है उसके लिए, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, उसको कोई भी तनाव नहीं है, उसको ये भी याद है पिछले साल की जो मैच थी उसमें कितने रन से भारत हारी थी या जीता था। जहां इंटरेस्ट होता है वहां पैशन होता है, और जहां पर इंटरेस्ट ही नहीं है, जहां प्रेम ही नहीं है, तो वही कार्य क्या बन जाता है, तनाव बन जाता है। इसके लिए जो भी हम करें, जैसे सुबह के सत्र में भी कहा था वो तीन लोगों की कहानियां, हम क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं, या फिर भगवान का मंदिर बना रहे हैं। तीन मजदूर एक ही काम कर रहे हैं, पहला कहता है पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरा कहता है पेट भर रहा हूं, तीसरा कहता है मंदिर बना रहा हूं, क्योंकि तीसरे के लिए वो पैशन है, तीसरे के लिए उसका दिलो दिमाग उसमें डूबा हुआ है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करना है, तब वो कार्य खेल बन जाएगा, तब वो कार्य हमको स्ट्रेस नहीं लगेगा। रोनाल्डो नाम का एक प्लेयर हुआ है, फुटबॉल प्लेयर, सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध। एक बार खेल रहा था और खेलते खेलते पांव उसका घायल हो गया, खून बहा जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है टीवी में, फिर भी खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और आधे घंटे तक वो खून बहा जा रहा है, और मैच पूरी हुई, वो जीत गया, और जीतते ही उसने देखा, अरे ये खून, ये तो आधे घंटे से बह रहा था, क्योंकि जुनून इतना है, पैशन इतना है, इंटरेस्ट इतना है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होता तो सबसे पहले तो थोड़ी सी भी चोट लगी तो हम कहते हैं हमारा तो हाथ दुख रहा है, हम नहीं खेलेंगे आज, तनाव, और जबरदस्ती खिलवाओ तो तनाव। तो जो चीज में इंटरेस्ट होता है वो पैशन बन जाता है, जो चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें हम, इट इज नोन एज लेबर ऑफ लव, लव ऑफ लेबर, बिल्कुल थकान की महसूसता नहीं होती है। जैसे कोई माँ है, उसकी बेटी की शादी है, थकती है क्या वो, कितना काम करती है दिन रात। जैसे कोई माँ है, उसका बेटा बीमार है, तो वो ये कहती है 5 बज गए मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं जा रही हूं, बाय। उसके लिए ना दिन है ना रात है, क्योंकि उसका प्यार है। तो जहां प्रेम होगा, जहां प्यार होगा, जहां इंटरेस्ट होगा, वहां कोई लेबर नहीं, वहां कोई मशक्कत नहीं, वहां कोई मेहनत नहीं, वहां सब कुछ सरल होगा। ओम शांति। और भी है, इमोशनल पिलर को मजबूत कैसे बनाएं, भावनात्मक स्तंभ। एक होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने। हमें कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर किसी ने एक चित्र भेजा, वो जो चित्र था उसमें दो हिरन थे, पहला जो हिरन था उसको एक तीर लगा और वो घायल होकर नीचे गिर गया, दूसरा वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है, खड़ा है, पूरा शरीर तीर से लदा हुआ है, फिर भी खड़ा है। दिस इज नोन एज इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल स्टेबिलिटी। दुनिया वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, पर खुद डिस्टर्ब नहीं होना। इंग्लिश में, साइकोलॉजी में शब्द है HSP, HSP अर्थात वो व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव पर्सन। उसको जरा सा कुछ बोल दो, छुई मुई, टच मी नॉट, आंखों से आंसू। ऐसा व्यक्ति एक रीति से अच्छा है, परंतु जीवन के कठोर पथ पर वो टूट जाएगा, हार जाएगा। ये तो धधकती अंगारों पर चलने का मार्ग है, यहां तो बहुत कुछ सहन करना है, सूरज रे जलते रहना। ये तेरे भाग में ही है, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। यहां तो सिक सिक झुक झुक मरमर सब कुछ सहन करना है। अगर थोड़ी थोड़ी बातों से डिस्टर्ब होते रहे, किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, डिस्टर्ब हमको क्यों कहा, हमको कोई कुछ ना बोले, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या सभी हमारी स्तुति करे? ऐसा हो सकता है कोई कहे अरे वाह तुम तो 16 कला संपन्न, 8 शक्तियां तुम में, 9 खजाने तुम में, सारे 36 गुण तुम में दिखाई देते, हम क्या सोचेंगे? ऐसा सब कहेंगे हमसे? कभी नहीं होगा। यहां सब सहन करना पड़ेगा, ग्लानी सहन करनी पड़ेगी, अपमान सहन करना पड़ेगा, अविश्वास सहन करना पड़ेगा, निंदा सहन करनी पड़ेगी, विरोध सहन करना पड़ेगा। सब कुछ सहन करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति ऐसा सहन करता है सब कुछ, तब कहीं शक्तिशाली बनता है। किसी भी सम्राट का जीवन कहानी पढ़ो, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ो, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ो, ऐसे ही सम्राट नहीं बने ये लोग। इतना सहन किया, इतना सहन किया, अपनों से धोखे सहन किए, सब कुछ सहन करने के बाद ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। और इमोशनल पिलर अर्थात स्ट्रांग करना, अर्थात पहले से ही सोच के रखना ये सब होगा, ये सब होगा। जो धोखा देने वाला होगा वो अपना ही निकलेगा, तब दर्द ज्यादा होता है। तो स्ट्रांग बनाने के लिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे पास ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के मनन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। अब्राहम लिंकन का अगर जीवन देखो, 18 बार हार हुई है, अलग अलग रीति से, अलग अलग जीवन के पहलू में, कभी कुछ हुआ, 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 और लास्ट में 1864 में इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अचानक नहीं हुआ, बहुत सहन करना पड़ा। और जो भी महान बनेगा उसे सहन करना पड़ेगा। मूर्ति कैसे बनती है? छन्नी और हथौड़ों के मार सहन करने पड़ते हैं उसको। और जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, फाइनल जो टचेस होते हैं उसमें तो और दर्द होता है। नाक थोड़ी सी ठीक नहीं है, लोगों को हमारी बहुत चिंता है, वो चाहते हैं कि हम एकदम परफेक्ट बने, उनको हमारी नाक पसंद नहीं है, इसलिए छेनी और हथौड़े से हमको नाक ठीक करते, कभी कान ठीक करते, कभी हमारी आंख ठीक करते, वो चाहते हैं कि हम एकदम परफेक्ट मूर्ति बने। वो नहीं चाहते कि हम थोड़ा इम्परफेक्ट रह जाए, इसलिए जो जो निंदा करने आए, कबीर ने कहा है निंदक निहारे राखिए, निंदक का घर तो बिल्कुल बाजू में ही होना चाहिए, ताकि हम जो कुछ कहे तुरंत विरोध करें, सब हमारी बातें मानने लगे, तारीफ ही करने लगे, हम इंप्रूव कहां से होंगे? ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, जो हमारी निंदा करे, ग्लानी करे, अपमान करे, अपना ज्ञान योग का त्याग कर हमारी चिंता में है, अपना ग्रेजुएशन छोड़कर हमारे पर पीएचडी कर रहे हैं, फ्री में हम पर पीएचडी हो रही है, तो उनका पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद उन्हीं का। अगला प्रश्न है, अरे ये प्रश्न नहीं है तो कुछ और है। अच्छा प्रश्न इधर रखा है, ये हो गया दो। हाँ, संकल्प में शक्ति कैसे लाए? भारत में माउंटेन मैन का नाम आपने सुना, दशरथ मांझी, किस किसने सुना? दशरथ मांझी छोटे से गांव में रहता था, उसकी पत्नी बीमार पड़ी, हॉस्पिटल बहुत दूर था, लेके गया, जाते जाते पत्नी की मृत्यु हो गई। संकल्प किया कि ये जो बीच में इतना बड़ा पर्वत खड़ा है इसके वजह से ऐसा हुआ, इस पर्वत को ही हटा दूंगा। अपनी छेनी ली और हथौड़ा लिया और पर्वत को तोड़ने लगा। लोगों ने हंसी उड़ाई, मूर्ख क्या कर रहा है, तुम कहां और ये पर्वत कहां? तीस चालीस साल तक पर्वत को तोड़ता रहा तोड़ता रहा तोड़ता रहा, उसे ना कोई इनाम मिलने वाला था, ना कोई रिकॉग्निशन, कुछ भी नहीं, बस अपना कार्य करता रहा करता रहा करता रहा। एक संकल्प था बस कि जो मेरे पत्नी के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। करता रहा करता रहा करता रहा और आखिर कर दिया, तोड़ दिया पर्वत को। ये कौन सी शक्ति थी? संकल्प की शक्ति। अनुरिमा सिन्हा का नाम सुना है? अनुरिमा सिन्हा फर्स्ट हैंडीकैप लेडी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ट्रेन से जा रही थी, लखनऊ से ट्रेन चली दिल्ली, ट्रेन के बीच में कुछ लफंगे आ गए अंदर, उसके जेवर छीनने लगे या कुछ करने लगे और वो धड़ाम से नीचे गिर गई चलती ट्रेन से पटरी पर। उधर से दूसरी ट्रेन आ गई, उसके पैरों से ऊपर चली गई, पैर पूरा खत्म। वहां से एम्स पहुंचाया गया, दिल्ली एम्स। कितने मास एम्स में रही, रिश्तेदार आने लगे और ज्यादा दुखी करने के लिए, अरे अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। और वहां बैठे बैठे ही किसी का जीवन उसने पढ़ा और उसे प्रेरणा आई कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मैं अब ऐसा कुछ करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। और वहां से उसने वो जयपुर फुट, आर्टिफिशियल फुट, कृत्रिम पैर लगाया गया और फिर ट्रेनिंग चालू की पर्वत पर चढ़ने की। कोई दूसरा होता तो इटरनली हमेशा के लिए डिप्रेशन में चला जाता। संकल्प किया कि मुझे वो करना है जो किसी ने नहीं किया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, फर्स्ट पैरालाइज्ड हैंडीकैप लेडी। ये क्या था? संकल्प। संकल्प में इतनी शक्ति है, इतना बल है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, चढ़कर गिरना गिरकर अखरना चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता, मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है? देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक संकल्प ले लिया तो संकल्प को शक्तिशाली बनाने की विधि है, सबसे पहले तो संकल्प करना। और एक बार संकल्प कर लिया तो रोज फिर उसको पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये सोचा है। याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य ये है। हमारे वहां माउंट में एक भाई है जिसने आईने पर ही लिख के रखा है, नाम नहीं बताएंगे, आईने पर लिखा हे अपना नाम, हे मूर्ख अपना नाम आगे, क्या करने आया था और क्या कर रहा है मधुबन में, क्या करने आया था और क्या कर रहा है, ताकि रोज पढ़ू। अपने आप को याद दिलाना, अपने आप को स्मृति। तो संकल्प की पहली स्टेप है पहले संकल्प करना, सेकेंड स्टेप है उसको रिवाइज करते रहना ताकि भूले ना कि मेरा लक्ष्य क्या है। थर्ड स्टेप प्लान बनाना। केवल संकल्प करने से कुछ नहीं होता है, प्लान बनाना चाहिए कि ये मुझे करना है। चलो किसी को लेट उठने की आदत है, वो डिसाइड करता है कि कल से मुझे 4 बजे उठना है। संकल्प कर लिया, रिवाइज कर लिया, इतना काफी नहीं है, अब आगे क्या करना पड़ेगा उसको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग में क्या होगा? रात को जल्दी सोना पड़ेगा ताकि जल्दी उठे, अलार्म लगानी पड़ेगी, पर अलार्म से भी कुछ नहीं होगा। एक भाई था जिसको नींद इतनी आती थी कि सुबह उठता ही नहीं था, रोज अलार्म लगाता था और जैसे 4 बजे अलार्म बजता था हृदय के अंदर से हाथ कब निकलता था और उसको बंद करता था पता ही नहीं चलता था। तो उसने एक दिन एक युक्ति रची। उसने कहा ये जो अलार्म घड़ी जो है ना, बाजू वाली जो खटिया है उसके नीचे जाके डाल के रखता हूं, ताकि उठूंगा तब तक नींद टूट जाएगी, फिर नीचे घुसूंगा, फिर उसको बंद कर दूंगा। कितनी अच्छी युक्ति निकाली। दूसरे दिन जोर से अलार्म बजा, एकदम से उठा, कहां से बज रहा है, फिर याद किया हां वो नीचे रखी थी, फिर उठा, फिर नीचे घुसा, फिर उसको बंद किया और वहीं सो गया। वो दूसरी बात है। फेल हो गई मेथड। इतना आसान नहीं है, असफलता आएगी। संकल्प करना, रिवाइज करना, प्लानिंग बनाना, और चौथी स्टेप इंप्लीमेंट करना, कार्यान्वयन। जो प्लानिंग बनाई, अब 3 दिन की प्लानिंग बनाओ कि मैं 3 दिन ये करूंगा, बस 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन से ज्यादा नहीं। 3 दिन हो गए तो फिर अपने आप को शाबाश की देना, अरे वाह मैंने कर दिया, अब मैं 7 दिन करूंगा, फिर 7 दिन की प्लानिंग बनाना, फिर 7 दिन के बाद अपने आप को और शाबाश की देना। जैसे एक व्यक्ति था, यहां पर भी फेल हो गया मामला, एक व्यक्ति था जो रोज शराब पीता था, जैसे ही दिन भर सोचता था शराब पीना बहुत खराब है, मेरे पत्नी सबका जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरी वजह से सब दुखी है, बच्चे मुझसे बात नहीं करते, नौकरी छूट रही है, दिन भर ये सोचता, परंतु जैसे ही शाम आ जाती है क्या होता है, अपने आप कदम मधुशाला की तरफ, अपने आप, फिर पीता है, फिर पश्चाताप करता है, रोज रोज पीता है, रोज पश्चाताप करता है, एक दिन ऐसा दृढ़ संकल्प करता है कि पीऊंगा ही नहीं। वो जो दारू की दुकान है वहां से गुजरने लगता है और कहता है उधर देखूंगा भी नहीं बिल्कुल, ये दारू की दुकान इधर मधुशाला, मैं खाना, और बढ़ता है, एकदम मन में इच्छा होती है एक बार तो देखूं, एक बार तो बिल्कुल नहीं, और पूरा पार कर लेता है, और फिर इतना खुश हो जाता है, वाह आज मैंने वो कर दिया जो कभी नहीं किया, इसी खुशी में हे मेरे मन तुझे आज डबल पिला दूंगा। और वापस जाके डबल पी लेता है। आदत इतनी जल्दी नहीं टूटती है, टाइम लगता है, आदत को बनने में इतना टाइम लगा तो एक दिन में टूट जाएगी क्या? धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे। तो इंप्लीमेंट करना, अगली स्टेप इंप्लीमेंट करने के बाद एनालिसिस करना अपना कि कहां तक मैं कर पाया, फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, उदास नहीं हो जाना है, ठीक है उठे नहीं, आज उठे ही नहीं, 2 दिन उठा तीसरे दिन उठा ही नहीं, सोचो क्या कारण है, क्या हुआ, उसको फिर ठीक करो, फिर एक नया प्लानिंग फिर से बनाना, नया प्लानिंग, हर बार नया प्लान होना चाहिए, वही वही प्लान काम नहीं करेगा, दूसरों को पूछो कि आपने कैसे छोड़ा इस आदत को, हमारी तो छुट्टी नहीं है, आप लोग कैसे उठ पाते हो सुबह सुबह, हम नहीं उठ पाते, क्या करें, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स। तो संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए मन में विचार चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ज्ञान चाहिए, अनुभव चाहिए, नहीं है तो दूसरों से पूछो कि कैसे आपने छोड़ा, हमको भी करना है ऐसा, तो वो मदद करेंगे। तो ये हो गया संकल्प शक्ति को कैसे शक्तिशाली बनाए। चलो तब तक हम और एक बात आपको बता देते हैं। एक शराबी था, रोज शराब पीता था, रोज। एक दिन पत्नी से बहुत झगड़ा हो गया, तो वो खुद इतना परेशान हो गया और उसने बस सोच लिया आज से सब बंद, सारी शराब की बोतलें थी सब बाहर लेके आया बरामदे में, पहली शराब की बोतल ली और उस बोतल से कहा, खाली थी बोतल, कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ती है, और उस बोतल को फोड़ दिया। दूसरी बोतल ली वो भी खाली थी, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, फोड़ दिया। तीसरी बोतल ली, तुम्हारी वजह से कोई मुझे नौकरी पर नहीं रखता, और फोड़ दिया। एकदम गुस्सा आ गया, एकदम आज बिल्कुल परिवर्तन का संकल्प है, पूर्ण परिवर्तन। चौथी बोतल ली और फोड़ने ही वाला था तो देखा भरी हुई है. उसने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो. और रख दी. हमारे जीवन में भी ऐसी कोई एक भरी हुई बोतल है. हर एक को अपनी भरी हुई बोतल ढूंढनी है. वो कौन सी है? क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, आवेग है, आवेश है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, क्या है? कौन सा विकार है? सब कुछ छोड़ने को तैयार है, पर जैसे ही उस बोतल की बारी आती है और उसको फोड़ने ही जाते हैं तो नहीं 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 तुम निर्दोष हो. और रखती. तो ऐसी हर एक के जीवन की एक ना एक भरी हुई बोतल है. उसको ढूंढो और संकल्प करो और आज इसी सभा में सबके सामने फोड़ देना, क्योंकि वो निर्दोष नहीं है. अच्छा, ओम शांति.